الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. پچھلے دنوں پاکستان میں ایک بہت ہی اندوہناک واقعہ رونما ہوا جس میں ایک بہت ہی معصوم بچی کے ساتھ زیادتی اور ظلم کر کے اس کو قتل کر دیا گیا. اس واقعے پر پوری قوم بہت غمزدہ بھی ہے اور پر احتجاج بھی. یقیناً اس طرح کے اور واقعات بھی ہوتے ہوں گے اور ہو رہے ہوں گے، لیکن افسوس یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی خاص اقدامات اس حوالے سے نہیں کیے جاتے. اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت کے راستے کھولے، شعور اور سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے معاملات کو درست کریں قبل اس کے کہ اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا برسایا جائے. کہ مظلوم کی آہ سے ڈرنا اور بچنا چاہیے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو اس کے لیے تو استثناء ہے، اس کے علاوہ کسی کو رونے دھونے، چیخنے چلانے، بین کرنے کی اجازت نہیں کہ دہائی دیتا پھرے. لیکن اس مظلوم کے ساتھ جو ہوا اس کے نتیجے میں پوری قوم اس کی طرف سے سراپا احتجاج ہے. قانونی کارروائی اپنی جگہ ہو رہی ہے، اللہ سے امید ہے اور دعا بھی ہے کہ اس معاملے میں کوئی حتمی فیصلہ ہو اور مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے، تاکہ آئندہ اس طرح کے گھناؤنے کام کرنے کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی لوگوں کی روح کانپ جائے. اللہ ہمارے ملک پر، ہمارے لوگوں پر اور تمام امت پر، تمام انسانوں پر اپنا کرم اور اپنا فضل نازل فرمائے. اس طرح کے واقعات جب بھی ہوتے ہیں تو فطری طور پر بہت سے جذبات ابھر جاتے ہیں، بہت سارے لوگ جوش اور جنون میں آتے ہیں. لیکن اہل اللہ سے، اللہ کے بندوں سے تقاضا یہ ہے کہ وہ اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، وہ حدود اللہ سے تجاوز نہ کریں. جذباتی ہو کر بعض اوقات ہم ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، کر دیتے ہیں کہ جو خلاف واقعہ ہو یا خلاف شرع ہو. اس سے ہمیں بچنا بھی چاہیے، احتیاط بھی کرنا چاہیے. ایسے موقعوں پر بہت سارے لوگ اس سے اپنے مذموم مقاصد کو تقویت دینے کے لیے امت کے سادے لوح لوگوں کو اور دین کی طرف مائل عوام کو بدزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو دشمن اسلام گاہے گاہے نشانہ بناتے ہیں، اسی طرح ان کے وہ رسا جو علماء ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں. تو کچھ سازشی ذہن کے لوگ، کچھ بدباطن قسم کے لوگ اپنے طور پر ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھا کر امت میں دراڑیں ڈالنے کے لیے، ایسے لوگوں سے کہ جن پر امت کے اکثر لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے، ان سے محبت اور تعلق ہوتا ہے، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی عمل کی یہ کڑی ہے کہ یہ نامبارک کوشش کی گئی اس واقعے کے ڈانڈے کچھ علماء سے ملانے کی. بہشتی زیور کے حوالے سے بالخصوص یہ سوشل میڈیا پر ایک عکس پھیلایا جا رہا ہے کہ جس میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی ایک عبارت کو پیش کر کے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ گویا علماء اس طرف لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں اور گویا ذریعہ بنتے ہیں اس طرح کی حرکتوں کے کہ جو اس شخص نے کیا. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت نے لکھا کہ نابالغ बच्ची से अगर किसी ने जिमा किया हो तो उस नाबालिग के लिए गुस्ल वाजिब नहीं है। ये एक फिकही मसला है और इस पर उम्मत का अक्सर उलमा का तबका मुत्तफिक है कि शरीयत के अहकामात सिर्फ बलूगत के बाद ही लागू होते हैं। जहाँ फिकही मसाइल बयान किए जाते हैं तो उसमें तमाम बातें एक ख़ास मौजू के तहत आती हैं। चुनाचे यहाँ गुस्ल के वाजिब होने और वाजिब ना होने की सूरतें बयान हो रही हैं। अब एक सवाल तो पहले ये उठता है कि क्या छोटी बच्ची से निकाह किया जा सकता है कि नहीं। तो शरान नाबालिग बच्ची से उसके वली की इजाज़त के साथ निकाह करना जायज़ है, और ये बात मायूब भी नहीं समझी जाती थी पुराने ज़माने में, और इस पर इख्तलाफ भी नहीं किया न गैर मुस्लिमों ने न मुस्लिमों ने। मौजूदा ज़माने में अब इस चीज़ को एक गाली के तौर पर पेश किया जाता है। चुनाचे ऐसे लोग भी हैं कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ऐसे इल्ज़ाम लगाया करते हैं। ये अलग बात है कि छोटी उम्र की बच्चियों से शादी करने का मामूल आम तौर पर उम्मत में मौजूद नहीं रहा। खुद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रुख्सती उनकी बलूगत के बाद हुई, अगरचे निकाह छोटी उम्र में हो गया, जो ख़ुद इस बात की दलील है कि नाबालिग से उसके वली की इजाज़त के साथ निकाह किया जा सकता है, लड़के से भी और लड़की से भी। फिर इसमें इख्तलाफ है कि जब वो बच्ची या बच्चा बालिग हो जाए तो क्या उसको ये इख्तियार है कि वो अपना ये निकाह जारी रखे या ख़त्म करे। इसमें फुकाह का इख्तलाफ है, उस तफसील को छोड़ देते हैं, लेकिन फ़ी नफ्से ही निकाह करना शरान इसमें कोई मुमानात नहीं है और कोई लॉजिक भी नहीं है उसके इनकार की। ये अलग बात है कि आज के ज़माने में ये एक मायूब बात समझी जाती है, और अमली तौर पर जैसा कहा कि उम्मत में इसका कोई रिवाज भी नहीं रहा। एक चीज़ का जायज़ होना अलग बात है और उसी चीज़ का मामूल भी होना बिल्कुल दूसरी बात है, और इसी वजह से कानून चूँकि अब अक्सर ममालिक में ये है कि कोई भी बच्चा या बच्ची जब तक के 18 या उससे ऊपर उम्र को न पहुंच जाए उसकी शादी या निकाह न किया जाए। चुनाचे कानून की बालादस्ती के लिए, निज़ाम के सही रखने के लिए ऐसे कवानीन पर ही अमल किया जाता है, और यही मसला समझाया जाता है कि कोई भी शख्स 18 साल से कम उम्र के बच्चे या बच्ची की शादी न करे, उनकी इजाज़त से भी नहीं और वली की इजाज़त से भी नहीं। इसलिए कि छोटी उम्र की शादी करना जायज़ होना एक मसला है, इसका फ़र्ज़ या वाजिब होना बिल्कुल दूसरी बात है। न ये फ़र्ज़ है न ये वाजिब है, गुंजाइश है, और उस गुंजाइश से सिर्फ वहीं फ़ायदा उठाया जाएगा जहाँ उसके करने से कोई मसाइल पैदा ना हो, नुकसान ना हो, कानून के ख़िलाफ़ बात न जाती हो। तो इसलिए प्रैक्टिकली ऐसा न किया जाता है न किया जाएगा। अब इस सूरत में अगर एक फ़र्ज़ी केस बना लिया जाए कि किसी की शादी नाबालिग बच्ची से हो गई है और ये उसके साथ सोहबत करे, ज़ाहरी बात है मियाँ बीवी के दरमियान इस तरह का ताल्लुक़ कायम होता है, तो अब इस सूरत में उस औरत पर जो बच्ची है उस पर गुस्ल वाजिब होगा कि नहीं। तो नाबालिग होने की वजह से उस पर ये गुस्ल वाजिब नहीं होगा। हज़रत ने ये बात अपनी किताब बहिश्ती ज़िवर में लिखी, और ये हनाफ का मसला है, और उसके अलावा दीगर आइम्मा के भी यहाँ ये बात इसी तरह से मौजूद है। ये बात असल में जो मंजर आम पर लाई गई बाकायदा प्लानिंग और साजिश के तहत, उसमें 2005 के करीब और उससे कुछ पहले, बल्कि और भी काफ़ी पहले 90s में गैर मुकल्लिदीन के एक आलिम मेराज रब्बानी साहब हैं जो इंडिया से हैं, लेकिन अब कई दहाइयों से सऊदी अरब मुंतकिल हो गए हैं और सऊदी गवर्नमेंट के पेड मुलाजिम होने की हैसियत से वहाँ रह रहे हैं। उनका कहना यह है कि वो पहले बरेलवी थे, फिर देवबंदी हुए और फिर आज अब सलफ़ी हो गए पिछले 30-35 साल से। इसके बाद क्या प्रोग्राम है अल्लाहु आलम, लेकिन उनका सारा जोर इस पर है कि किसी तरह से बहिश्ती जेवर को, फ़ज़ाइल आमाल को और इस तरह की और किताबें जो उलमाए अहनाफ की हैं उनके ऊपर कीचड़ उछाली जाए, उसमें से खोल खोल के निकाल निकाल के गंदगियाँ जो इनके हिसाब से हैं गलत उनको दिखाया जाए, बताया जाए। और वो इतनी बेइल्म बातें ये करते हैं कि आदमी बाज़ औक़ात सर धुनना शुरू कर देता है कि इनको इतनी बुनियादी फ़िक़ी मसाइल का भी इल्म नहीं। और मज़े की बात यह कि ख़ुद गैर मुक़ल्लिद हैं और इनके आइम्मा में, इनके बड़े जो अकाबरीन हैं उनमें एक बड़ा नाम अल्लामा वहीदुज़्ज़मा का है, जिन्होंने बुखारी का भी तर्जुमा किया और दीगर कुतुब का भी किया और बड़ी किताबें लिखीं। उनकी किताब कंज़ुल हक़ायक़ वगैरह और ताजुल मुकल्लल वगैरह, और बल्कि शायद ताजुल मुकल्लल किसी और की हो। इसी तरह नुज़ुलुल अबरार एक किताब है, इसके अंदर ख़ुद अल्लामा वहीदुज़्ज़मा ने भी यही मसला ऐसे ही बयान किया है जैसा कि बहिश्ती ज़ेवर में बयान हुआ। लेकिन इन साहब की या तो जहालत कही है कि उनको पता ही नहीं कि यह बात उनके अपने अकाबरीन लिख चुके हैं हज़रत थानवी से पहले, यानी बहिश्ती ज़ेवर से पहले या उसके आगे पीछे, या ये बिल्कुल जानते हैं कि उसमें ये ऐसा ही लिखा है लेकिन लोगों को गुमराह करने के लिए, बहिश्ती ज़ेवर को बदनाम करने के लिए ये बात निकाली जाए और उछाली जाए और ये कहा जाए कि इस तरह ये उलमा, ये मौलवी लोगों को राह दिखाते हैं कि छोटे बच्चों के साथ भी जमा किया जा सकता है। ज़ाहिर बात है इनका खुब से बातिन है, तो या तो जहालत की वजह से ये बात कही या दजल की वजह से कि जानते बूझते अपने अकाबरीन की उसी इबारत को पीछे रखो, छुपाओ, गायब कर दो, दूसरों की ऐसी इबारत को फैलाओ, उस पर इल्ज़ाम लगाओ और उसमें इस तरफ वसवसा भी डाल दो कि हज़रत ये काम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि लोग इस तरह की गड़बड़ों में पड़े। लेकिन ज़ाहरी बात है कि इस तरह करके ये अपनी ही आखिरत ख़राब कर रहे हैं। बहिश्ती ज़ेवर के इस मसले से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये तो हमने माशरे के अंदर जो गंदगियाँ फैलाना शुरू कर दी हैं, छोटे बच्चों को हम टीवी फिल्मों का आदि बनाते हैं, कार्टून्स दिखाते हैं, अब हर बच्चे को एक्सेस है उरियानी और फहाशी की तरफ, पोर्नोग्राफी की तरफ, और फिर ये लोग इसी में बड़े हो रहे हैं 20-25-30 साल से। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ें देख देख के जो लोग जवान होंगे वो किस तरह के अफ़ाल में पढ़ेंगे और ख्यालात को परवान चढ़ाएंगे, तो उसकी तरफ तो कोई तवज्जो नहीं, उस पे तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। किसी तरह से मौलवियों को, उलमा को, अहलुल्ला को बदनाम किया जाए ताकि लोग अपना एतमाद उनसे मज़ीद खोएं और दूर कर दें अपने आप को उन लोगों से, और फिर इनके आगे पीछे हों और इनकी जहालतों की वजह से ख़ुद भी गुमराह हैं, उन्हें भी गुमराह करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के मिज़दाक़ के इन्नल्लाहा ला यक़बिदुल इल्मा इंतज़ाअन वलाकिन यक़बिदुहु बिक़ब्दिल उलमा, के अल्लाह सुब्हानहु व तआला इल्म को अचानक से उचक नहीं लेंगे बल्कि इस तरह उठाएंगे कि उलमा उठते जाएं, और गुमराह लोग फिर जाहिलों को अपना इमाम बनाया करेंगे और ये उनसे फ़तवे लेंगे, वो उनको फ़तवे देंगे, ख़ुद भी गुमराह होंगे, इन्हें भी गुमराह करेंगे। और कमा क़ाल अलैहि सलातु वसलाम, तो जब इस तरह की बात सुना और पढ़ा करें तो बहुत एहतियात से तवज्जो देकर गौर किया कीजिए कि जिन साहब की ये बात हो रही है वो तकरीबन 1000 किताबों के मुसन्निफ़ हैं, एक उम्मत ने उनसे फ़ायदा उठाया है। उनसे इख्तलाफात हो सकते हैं आपको, आप दूसरे मकतबे फ़िक्र से मुतालिक हैं, आपको उनसे इख्तलाफात होंगे, लेकिन किसी के इल्म पर जिराह करने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले उस मसले की तहकीक तक पहुंचना बड़ा ज़रूरी है। दयानतदारी बहुत ज़रूरत है उसकी, और इसी तरीके से अपनी नीयतों को टटोलना भी बड़ा ज़रूरी है। तो उस इबारत में कहीं ये बात नहीं है कि लोग छोटी उम्र की बच्चों बच्चियों से शादी किया करें, बल्कि एक बात आगे बढ़ा बताऊँ, अल्लामा वहीदुज़्ज़मा साहब ने तो अपनी किताब में इससे आगे ये भी लिखा है कि कोई शख्स अगर जानवर के साथ जिमा करे तो उस पर गुस्ल के क्या मसाइल हैं। इसका मतलब है कि वो ये हिंट दे रहे हैं कि जानवरों के साथ जिमा किया जा सकता है, यकीनन नहीं, क्योंकि ये बात तो ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से भी है। तो क्या इसका ये मतलब है कि हिंट दिया जा रहा है नाऊज़ बिल्ला, वहाँ ये इल्ज़ाम लगाएंगे? तो ये असल में इस शख्स की जहालत है जिसने ये पोस्टर बना के फॉरवर्ड किया। और जैसा मैंने कहा कि ये बातें इनके लोग इधर उधर फैलाने की कोशिश करते हैं, सारे ऐसे नहीं हैं, बहुत सारे बहुत समझदार लोग भी हैं जो इनसे बरी हैं, लेकिन बहरहाल इनका नाम मैंने इसलिए ले दिया क्योंकि ये इस तरह की बातें फैलाते भी हैं और इनको लोग सुनते भी हैं। तो उनकी जहालतों के और बहुत सारे वाक़यात हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत दे और उनके ज़रिए जो गुमराही फैली है उसका उन्हें मुदावा करने की तौफीक अता फरमाए इनकी इसी ज़िंदगी में, ताकि बाद में इनके लिए मुश्किलात न हो। आखिरी बात यह कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी में बयान फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं मन आदली वलीयन फ़कत आदंतुहु बिलहर्ब, कि जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करेगा तो मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने क़ुरान में ऐलान जंग सूद लेने देने वालों से, और इस हदीस के अंदर ऐलान जंग अल्लाह के वलियों से दुश्मनी और बोझ रखने वालों के लिए कहा है। तो अपनी आखरत को तबाह होने से बचाना चाहिए। हज़रत थानवी साहब जैसे बुज़ुर्गों को तो हमारी तरफ से दिफा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं उनकी तरफ से दिफा कर भी नहीं रहा, इसलिए कि अहलुल्लाह की एक शान ये है कि सब लोग उनके सपोर्टर या उनकी तारीफ़ करने वाले नहीं होते बल्कि मुखालिफीन भी होते हैं, अल्लाह उनको दोनों तरफ से फ़ायदा पहुंचाते हैं। अंबिया की भी ये शान है और अंबिया के वरसा की भी यही शान है कि उनके दुश्मन भी होते हैं जिस तरह उनके दोस्त और चाहने वाले होते हैं। तो इन उलमा को किसी भी मकतब फ़िक्र से हो, रासिख उलमाए दीन अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे सरों के ताज हैं, इसलिए कि वो अंबिया के वरसा हैं, दीन उन्हीं के ज़रिए हम सीखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, इसलिए उनसे मोहब्बत करना चाहिए। अल्लाह के वली होने के लिए आलिम होना ज़रूरी नहीं है, सही बात है, लेकिन उलमा चूँकि ज़्यादा इल्म रखते हैं और ज़्यादा अमल करते हैं, ज़्यादा अपने आप को उन्होंने इन कामों में वक्फ किया है, तो अल्लाह की ज़ात से ज़्यादा उम्मीद होती है कि वो ज़्यादा अल्लाह की विलायत में, दोस्ती में अल्लाह के साथ उनका क़ुर्ब होगा, ताल्लुक होगा। तो इसलिए उनके साथ बहुत एहतियात करना चाहिए कि अपने आमाल ज़ाया न किए जाएँ, अपने आप को आखिरत में माखूज न किया जाए, कि हम सबब न बने कि अल्लाह हमारी पकड़ करे। अल्लाह हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।